भगवान के असीम अनुकंपा से हम लोग लघु वासुदेव मनन आचार्य वासुदेव यति के द्वारा रचित इसके आधार पर कैसे जीवन में वेदांत का मनन होना चाहिए। वासुदेव यति के द्वारा मनन किए जाने के कारण भी इसका नाम पड़ा वासुदेव मनन, अथवा वासुदेव परमात्मा का चित्त में कैसे मनन करना चाहिए इसलिए भी इसको कह सकते हैं वासुदेव मनन। लेकिन उन्होंने जो कोई ग्रंथ लिखा था वो बड़ा था, तो उसका नाम है बृहद वासुदेव मनन और ये है लघु वासुदेव मननम। मनन का क्या तरीका है देखो, अभी कितनी सुंदर बात आप लोग सुन रहे थे ना महाराज जी की सीडी कि बिल्ली को भी ठक ठक सुनने की जब आवाज की आदत पड़ जाती है तो वो भी डरती नहीं है, फिर आराम से दूध पीती रहती है। और आप बोल रहे थे क्या, महाराज जी बोलते हैं कि बात समझ में आए चाहे ना आए सुनते रहो, सुनते सुनते अपने आप समझ में आ जाएगा। तो बात तो सही है, सुनने की तो बात छोड़िए, यदि आपको सुनाई भी नहीं देता है, मान लो कोई ऐसा बहरा आदमी है, हम तो आदमी के मुंह पटपटाने से भी समझ लेते कि क्या बोल रहा है, अब तो अभ्यास के ऊपर ही तो है ये। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है घर में जिसका बोलना बंद हो गया, अब तो सब उसका काम इशारे से होगा, कोई भोजन में मौन धारण कर लेते हैं, मिर्ची मांगना है नमक ऐसे काम तो कराना पड़ता है ना, तो ये सब अभ्यास के ऊपर है। चाहे बहरे हो जाओ, बधिरों का भी क्लास चलता है इसलिए उनके पढ़ाने का पढ़ने का तरीका अलग है। तो इसलिए हम लोगों को तो भगवान ने कान दिया है तो सुनने में क्या परेशानी है, सुनो तो सही पहले। अब आप कोई कहे कि समझ में नहीं आता है तो समझ में नहीं आता कह करके सुनना छोड़ देंगे तब तो और भी समझ में नहीं आएगा, तो फिर समझेंगे क्या। इसलिए श्रवण का बहुत महत्व है। और श्रवण क्या है, ये अपने आप में परोक्ष ज्ञान है, सुनते ही आपात ज्ञान होता है, पीछे ये सब गया, इसका बहुत विचार हुआ। तो जिस आत्मा में आगंतुक दुखों के कारण हम सब परेशान हैं, आरोपण कर दिया, आत्मा और अनात्मा दोनों का घालमेल हो गया, युष्मद और अस्मद प्रत्यय का विवेक न होने के कारण कि दृष्टा कभी दृश्य रूप नहीं हो सकता, दृश्य कभी दृष्टा स्वरूप नहीं हो सकता, बल्कि दृश्य की भी सत्ता दृष्टा के अधीन ही है। उदाहरण दिया था उसमें, कुर्सी आदि का महत्व तभी है जब उसके ऊपर कोई बैठने वाला हो, अन्यथा इसको कुर्सी बोलते कौन जानता है। और तात्विक दृष्टि से देखो तो लकड़ी में ही कारीगरी करके बैठने का एक साधन बना दिया गया, चार पाये लगा दिए, लगता है भाई आधार है, इसमें एक पाये टूट जाए तब भी हम बैठने में डरते हैं कि हम गिर ना जाए चोट ना लग जाए। तो ये सब जो है दो साधन दो प्रपंच हैं, आत्मा और अनात्मा के अंतर्गत अर्थात प्रपंच के अंतर्गत ये दोनों आते हैं। इसी को समझाने के लिए आचार्य आगे आगे बात को बढ़ाते जा रहे हैं जिससे आसानी से समझ में आ जाए। जीव ब्रह्म की एकता कैसे हो सकती है इसके ऊपर विचार चल रहा था, जीव ब्रह्म ऐक्यम। इसमें उदाहरण दिया जैसे झाग के अंदर जो गुण आए हैं वो तरंग से, तरंग में जो गुण आए वो जल से, तो जल की जो अपनी अवस्था है इसको बोलते पारमार्थिक अवस्था, तरंग जो है ये व्यावहारिक अवस्था कह सकते हैं और झाग जो है ये प्रातिभासिक अवस्था है। वैसे ही ये जो जीव है, जीव की ये तीन अवस्थाएं मानी गई, व्यावहारिक प्रातिभासिक और पारमार्थिक। तो घटाकाश और महाकाश दोनों एक ही हैं, समझने के लिए अथवा समझाने के लिए अलग अलग नाम दे दिया गया। घट रूपी उपाधि से परिच्छिन्न होने के कारण उसका नाम पड़ जाता है घटाकाश। देखा जाए तो महाकाश के ऊपर ही एक मिट्टी के पात्र का आवरण पड़ गया। हम लोगों के पंचभूत रूपी शरीर का आवरण पड़ जाने से ही कहते हैं कि इस शरीर में ये आत्मा है। आत्मा आ गया, आत्मा निकल गया बोला जाता है। वास्तव में जब बोलते ना आत्मा निकल गया, तो वहां सूक्ष्म शरीर निकलता है, आत्मा का निकलना नहीं होता। और जब सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो गया तो कहते हैं न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, अब उसके सूक्ष्म शरीर का आवागमन बंद हो गया। क्यों? क्योंकि अत्रैव समवलीयन्ते, यहीं पर वो लीन हो गया। इसलिए जो ज्ञानी जाते हैं ना तो हम लोग खुश होते हैं, निर्वाण महोत्सव मनाते हैं। और गृहस्थ आश्रम में बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, है ना? और हमारे यहां महात्मा जब चले जाते हैं तब तो निर्वाण महोत्सव करके भंडारा करते हैं। महात्मा लोग जन्मदिन मनाना अच्छा नहीं मानते, पुराने महात्माओं की बात कर रहा हूं। वो लोग बोलते थे कि जन्म लेना कोई अच्छी बात है क्या? तो जब चले जाते हैं तो इस बात की खुशी में लोग भंडारे करते हैं कि अब इनका पुनर्जन्म नहीं होगा, जन्म रहित हो जाना ही तो मोक्ष है। और अभी जन्म लेना पड़ेगा तो मोक्ष कहां हुआ? तो कितने भाग्यशाली थे, कितने अच्छे थे कि आज वह जन्म मरण के चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए छूट गए, इस बात की खुशी में भंडारा होता है। और यहां जो जन्मोत्सव मनाते हैं किस बात की खुशी में भंडारा होता है, जन्मोत्सव होता है कि जैसे मैं पहले से फंसा था ऐसे एक और आ गया मुर्गा, ये भी फंसा, ये भी हमारे जैसा ही है। शायद इसी खुशी में करते होंगे, केक काटते होंगे, आओ भाई मैंने भी बहुत काटा है तुम भी काट ले। लेकिन वहां पर जो खुशी है कि ये चले गए, जन्म मरण के चक्कर से छूट गए। तो पर्दा हटाने की बात है, माया का पर्दा कैसे हटेगा? तो वही है, कहीं ठठेरे के बिल्ली बन के रहे तो ठग भी रहे हैं, वेदांत की बात भी चल रही है और माया भी अपनी जगह यथावत बरकरार है, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे किसी आदमी को झगड़ा करने की आदत पड़ जाती है तो उसको यदि एक दिन शांति से रहना पड़े तो लगता है आज दिन बेकार गया, मजा नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसकी आदत ही है झगड़ा करने की। और जिसको झगड़े करने की आदत नहीं है और उसके साथ यदि कभी कुछ हो जाए तो बोलता है बड़ा विक्षेप वाला दिन हो गया, सोचा नहीं था कि ऐसे दिन का सामना करना पड़ेगा। तो जिस चीज का अभ्यास हो जाए वही चीजें हमें अच्छी लगने लगती है। तस्माद् यथा परमार्थत्वेन घटाकाशो महाकाश एवं पारमार्थिक कूटस्थ परमात्मा एव इति सिद्धांत। पारमार्थिक दृष्टि से विचार करके आचार्य बोलते हैं कि घटाकाशो महाकाश एव, जो जीवात्मा है वो परमात्मा ही है। अब इसमें कोई संदेह की आवश्यकता नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। कहते फिर एक ही है तो दोनों का नाम अलग अलग क्यों है? तो अभी औपाधिक भेद तो रहेगा ना, शरीर वाला है तो शरीर का जो जो धर्म है वो आगे बता रहे हैं आचार्य क्या क्या होता है शरीर में रहने के बाद। लेकिन शरीर में आने मात्र से आत्मा सुखी दुखी हो जाए, आत्मा को भी शरीर के धर्मों से आरोपित करके शरीर जैसा माने, ये गलत बात है। तो हम लोगों का अपना अज्ञान माना जाएगा, वास्तव में आत्मा का इस शरीर से कोई लेना देना नहीं। और हम लोग दिन रात यही बोलते हैं, मैं आ गया जब बोलते हो तो शरीर को लेकर ही बोलते हैं ना, मैं आ गया। और थोड़ी देर के बाद बोलते हैं मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो जो मैं है वो मेरा नहीं होता और जो मेरा होता है वो कभी मैं नहीं होता है। इतनी बात समझ में आ गई तो समझ लीजिए ज्ञान में निष्ठा होने लगी। मैं कभी मेरा नहीं होता और मेरा कभी मैं नहीं होता। हम लोग जिसको मैं बोलते हैं वही थोड़ी देर के बाद मेरा हो जाता है। इसका मतलब हुआ शरीर आदि में जो मैं करके हम लोग बोल रहे हैं ये एकमात्र आत्मा और अनात्मा का अध्यास है। आत्मा और अनात्मा का जो विवेक होना चाहिए उसका अग्रहण है, अभी ग्रहण नहीं है। बोल भी रहे हैं लेकिन फिर भी उधर ध्यान नहीं है कि मैं मेरे से अलग है और मेरा मैं से अलग है। इतना चिंतन चलता रहेगा तो धीरे धीरे शरीर से अपने को अलग करके जब देखने का अभ्यास होने लगता है तो ऐसी स्थिति भी हो जाती है ज्ञानियों की कि कुछ भी हो रहा है शरीर में देख रहे हैं लेकिन उससे उनके मन में कोई खिन्नता नहीं है, कोई खेद नहीं है। अब जो श्रुतियों में हम लोग पढ़ते हैं सुनते हैं, आचार्य ने प्रातः स्मरण स्तोत्र में भी कहा प्रातर्भजामि मनसाम वचसामगम्यम वाचो विभान्ति निखिला यद अनुग्रहेण। प्रातर्भजामि, मैं उस परमात्मा का प्रातः काल भजन करता हूं। पहले वाले श्लोक में स्मरामि, उसमें हो गया मन का कार्य, इसमें है वाणी का कार्य, और प्रातर नमामि शरीर का कार्य, नमन करते हैं। प्रातर भजामि मनसाम वचसाम अगम्यम, जो मन और वाणी से अगम्य है, जिसको वाणी से कहा नहीं जा सकता, मन से जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता, क्योंकि मन जो कुछ सोचता है वह उससे भी पहले से ही पहुंचा हुआ होता है, इसलिए मन की भी वहां पहुंच नहीं है बल्कि मन से पहले से वो पहुंचा हुआ है, इसलिए वो अगम्य है मन और वाणी के द्वारा। इसको बोलते अवांग मनस गोचरम, बागातीत मनोतीत, ऐसा हो जाएगा मन से जो परे है वाणी से जो परे है। प्रातर भजामि मनसाम वचसाम अगम्यम, लेकिन वाचो विभान्ति, जिस वाणी से बोला नहीं जा सकता जिसके बारे में, लेकिन जो वाणी बोलती है वह भी उसी की कृपा से, जिस मन से जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता लेकिन मन जो सोचने का कार्य करता है वो भी उसी के अनुग्रह से। वाचो विभान्ति निखिला, वाणी स्त्रीलिंग है इसलिए निखिला उसका विशेषण है, अथवा वाच बहुवचन है तो निखिला भी बहुवचन मान लो, अर्थात समस्त वाणी, संपूर्ण वाणी, प्राणी मात्र जितने भी बोलने वाले हैं इन सब की जो वाणी प्रकट हो रही है, प्रकाशित हो रही है, उसी के अनुग्रह से कृपा से। वाचो विभान्ति निखिला यद अनुग्रहेण, अब आगे जो कह रहे यद अनुग्रहेण, अब फिर कह रहे यन नेति नेति वचन ही, जो शास्त्रों में लिखे गए वचन हैं, वाणी से कुछ न कुछ तो हम लोग बोलते ही हैं, तो पहले बोलते इदम अस्ति इति इति इति, ये है ये है। जब सृष्टि आदि की प्रक्रिया करते हैं तो आकाश वायु तेज जल पृथ्वी मानते हैं, आकाश है आकाश इति वायु रीति इति हो गए, सब है। और जब कहेंगे पृथ्वी न इति जल न इति, पृथ्वी भी नहीं है जल भी नहीं है, तो इति में न लगा दो तो क्या बनता है नेति, न इति नेति यन नेति। कल एक बात बहुत अच्छी देखी थी, कहीं पढ़ा था, उसमें लिखा था कि व्यक्ति जब स्वयं दौड़ता है, अकेले दौड़ता है, अपने आप प्रयास करता है, उसका नाम है रेस, लेकिन जब हमारे साथ परमात्मा रहते हैं तो उसका नाम पड़ जाता है ग्रेस। हाँ, केवल जी लगा दो तो क्या बन जाएगा ग्रेस, नहीं तो फिर क्या है रेस। यही यहां पर भी है, इति इति करके देखते रहो तो संसार ही दिखाई देता है, और जब न इति शुरू कर दो तो संसार से हट करके परमात्मा की तरफ हम चलने लगे, ये मान लेना चाहिए, अर्थात परमात्मा की ओर हमारी यात्रा प्रारंभ हो गई। न इति इसको बोलते युक्ति, युक्ति का तरीका है कि सबका निषेध करते चले जाएंगे। यम नेति नेति यत न इति न इति यम नेति नेति वचने निगमा अवोचम निगम, जिसके द्वारा निशेष रूप से ज्ञान होता है इसीलिए उसका नाम पड़ गया निगम, आगम निगम बखानी। तो जिसके द्वारा उस स्वरूप का बोध हो जाए निशेष रूप से, अर्थात जिसमें प्रपंच मात्र का कोई संबंध न रहता हो, इस तरह से शुद्ध ब्रह्म का जिसको ज्ञान हो जाए जिस चीज से, उसी का नाम है निगम। उस निगम के अंदर जो वचन आए हैं उन वचनों ने सब के द्वारा निषेध किया है न इति न इति। यम नेति नेति वचन ही निगमा अवोचम तम देव देवम, वह जो है देवों के भी देव है। अर्थात जैसे हमारी इंद्रियां देवताओं के अनुग्रह से आंखों से देखने में समर्थ होते हैं, हम उन्हीं देवताओं के अनुग्रह से कान और बाकी इंद्रियों से जितने भी व्यापार है सब करने में समर्थ होते हैं, लेकिन वे देवता भी जो हमारे ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं उस देवता का भी जो देव है वो कौन है? परमात्मा। इसने कह दिया तम देव देवम, वो जो देवों के जो देव है वो कैसे हैं? अजम अच्युतम अग्रियम आहुहु, वह अग्र जो सबसे आगे रहने वाले जिनको अच्युत बोलते हैं, जिसका नाम अज है, वह है परमात्मा। ये युक्ति के द्वारा परमात्मा को बोध कराने का जो तरीका है ये उदाहरण दे दिया। तो श्रुति युक्ति और अनुभूति ये तीनों जब एक समान हो उससे संपादित होने वाला जो ज्ञान यही मोक्ष के लिए साक्षात हेतु है। मोक्ष किससे होगा? श्रुति युक्ति और अनुभूति पूर्वक हुआ हुआ जो ज्ञान इसी से मोक्ष संपादित होता है। एवं न इति न इति बृहदारण्यक है और आचार्य ने ये प्रातस्मरण स्तोत्र में जो कहा अभी आप लोगों को सुना दिया दूसरे श्लोक में। इति वाक्य ना, इन वाक्यों से पंचदशी आप लोग श्रवण कर रहे हैं इस समय बहुत बढ़िया चल रहा है, जिसमें सत चित और आनंद का ही तो प्रतिपादन है। शुरू से लेकर के देखा जाए तो प्रत्येक प्रकरण का नाम क्या है? विवेक प्रकरण, पांच प्रकरणों तक। फिर दूसरे प्रकरण का नाम है दीप प्रकरण और तीसरे का नाम है आनंद प्रकरण। सब में नाम जोड़ दिया, तृप्ति दीप, चित्र दीप, कूटस्थ दीप, नाटक दीप। तो दीप मतलब चेतन चित, और विवेक जो हुआ सद और असद का विवेक हुआ सदरूप। तो सत चित और आगे जो है ब्रह्मानंद, योगानंद, अद्वैतानंद, विद्यानंद, विषयानंद, ये सब प्रकरण है। तो ये पांच आनंद प्रकरण है, पांच पांच पांच, पांच त्रिका पंद्रह, इसलिए पंचदशी नाम पड़ा। और किसी ने तो उसको आगे पंचदशी महाविद्या के साथ जोड़ दिया, ऐसा भी माना गया। यदि पंचदशी पढ़ लिया तो षोडशी जो परमात्मा है साक्षात जगत जननी पराम्बा ललिता त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी, उसकी प्राप्ति हो जाती है, ऐसा माना जिसने पंचदशी विद्या सीख लिया। तो उस आधार पर भी लगता है पंचदशी का इतना महत्व है। इसी पंचदशी के आधार पर ललिता त्रिशती एक अलग ग्रंथ है जिसके ऊपर आचार्य की टीका भी है। तो ललिता त्रिशती में 300 नाम है, ललिता सहस्र नाम में 1000 नाम है, और ललिता त्रिशती में करीब 60 श्लोक हैं, और प्रत्येक 20-20 श्लोक के हिसाब से जो है 15 × 30 एक मंत्र के ऊपर 20 नाम है। तो 15 × 30 हो गए तो 300 नाम हो जाते हैं। हाँ, उसी में से सब नाम है ना, ककार रूपा कल्याणी कल्याण गुणशालिनी ये सब आता है उसमें। तो ये क आदि से प्रारंभ होता है मंत्र, तो उसी हिसाब से नाम भी रखा है, हकार हरिंकार ये सब आ जाता है। तो उस पंचदशी में जितने भी ये विवेक किया गया है, विवेक के द्वारा युक्ति के रूप में ही परमात्मा को सिद्ध किया है। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, वस्तु की सिद्धि किससे होती है? लक्षणों से और प्रमाणों से। देहादि पंच कोशेभ्य, हम लोगों की जो पांच कोश वाला ये शरीर है, उससे पारमार्थिकम कूटस्थम पृथक कृत्यम कृत्य, पारमार्थिक जो कूटस्थ है, जो कल बताया था पांच भूत रूपी कूड़े में जो स्थित है, अथवा ये पंच भूत रूपी कूड़े जिसमें स्थित है, इसे उसका नाम क्या पड़ा? कूटस्थ। क्योंकि क्षरः सर्वाणि भूतानि और कूटस्थो अक्षर उच्यते, गीता 15वें अध्याय में बताया भगवान ने कूटस्थ का मतलब क्या है। तो देहादि पंच आदि से और भी जितने भी चीजें हैं, अवस्था आदि सब ले लीजिए, उन सब से पारमार्थिक कूटस्थ को पृथक करके, अलग करके, पारमार्थिकम कूटस्थम क्या है? तो अहम इति जानन सन। अभी तक तो अहम को हम लोग पंचभूत से मिला करके, अलग न करके बोल रहे थे कि मैं, लेकिन अब जो मैं बोलते हैं किसको? शुद्ध जो आत्मा है उसमें जो अहम वृत्ति बन रही है, ये अहम नहीं होता है ना, तो किसी को आत्मज्ञान होता ही नहीं। परमात्मा ने इसमें अहम डाला ही इसलिए कि इसके द्वारा तुम अपने को जानो। लेकिन अहम को जब अनात्मा के साथ जोड़ के हम लोग अनुभव करने लगे तो इसका नाम पड़ गया अहंकार। अहम करोमि, अहम गच्छामि, अहम बदामि, अहम करके जो बोलते ना, मैं चल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, सब शरीर के साथ जोड़ के बोल रहे हो। अब बोल रहे अहम ब्रह्मास्मि, अब क्या बोलना है? अहम ब्रह्मास्मि, इदम शरीरम मम शरीरम अस्ति, ये जो शरीर है मेरा, तो ये मेरा शरीर है, ये मैं शरीर नहीं हूं। कोई नहीं बोलता कि मैं शरीर हूं, जब भी बोला जाता है मेरा शरीर है, शरीर वाला हो लेकिन शरीर नहीं हो। धनवान जो होता है ना, धन वाला होता है, धन नहीं होता स्वयं। तो जैसे धन हमसे अलग है तभी धन वाला, तो शरीर हमसे अलग है तभी तो शरीर वाला होंगे। तो पारमार्थिक कूटस्थ जो अहम है, इसको देहादि पंच कोशों से अलग करके ऐसा जानता हुआ, तद अहम ब्रह्मास्मि इति श्रुति विचारेण, श्रुति के अनुसार जब विचार हुआ, श्रुति मतलब सुना, मालूम पड़ा, परोक्ष ज्ञान हुआ, और परोक्ष ज्ञान को दृढ़ करने के लिए युक्ति की आवश्यकता है। परोक्ष ज्ञान के बाद उस ज्ञान को दृढ़ करने के लिए किसकी आवश्यकता है? युक्ति, बार बार युक्ति लगानी है। श्रावण का महीना चल रहा है, भगवान शंकर जी की आराधना करो, और शंकर जी सब कुछ देते हैं, भुक्ति भी देते हैं और मुक्ति भी देते हैं। और भुक्ति मिले चाहे मुक्ति मिले, उससे पहले क्या चाहिए? युक्ति। और युक्ति कब करोगे? जब दिमाग लड़ाओगे, तो उससे पहले क्या चाहिए? बुद्धि। तो ये श्लोक लिखवाया था ना, आप लोगों को याद होगा, शिव प्रसादे न बिना न बुद्धि, शिव प्रसादे न बिना न युक्ति, शिव प्रसादे न बिना न सिद्धि, शिव प्रसादे न बिना न मुक्ति। शिव जी के प्रसाद चाहिए ना, शिव जी प्रसाद मतलब प्रसन्न, शंकर जी जब प्रसन्न होते हैं तो ये चीजें अपने आप मिल जाती है। शिव प्रसादे न बिना न बुद्धि, शिव प्रसादे न, शिव जी के प्रसाद के द्वारा ही मिलता है, बिना न, उसके बिना नहीं मिलता। तो शिव प्रसादे न बिना न बुद्धि, बुद्धि मिली तब क्या करो? फिर युक्ति करो। शिव प्रसादे न बिना न युक्ति। चलो कभी समय आएगा, बाबुलनाथ भगवान की कृपा हुई तो ये इसका भी विचार करेंगे। एक ग्रंथ ही है, सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह, ये आप लोगों ने सुना है? सुने हुए तो सब कुछ हो आप, नाम सुना है? सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह, नाम ही बहुत बड़ा है, पर नाम याद कर लो। सर्व वेदांत सिद्धांत और सार संग्रह, संपूर्ण वेदांत का जो सिद्धांत है उसका जो सार है उसको संग्रहित किया आचार्य ने, और वो है 1000 श्लोक। उसमें कितने हैं? विवेक चूड़ामणि से डबल समझ लो, विवेक चूड़ामणि 500 कुछ हैं, इसमें 1000 हैं। तो उसमें यह आता है, शिव प्रसादे न बिना न सिद्धि, शिव प्रसादे न बिना न बुद्धि, शिव प्रसादे न बिना न युक्ति, शिव प्रसादे न बिना न मुक्ति। ये जब हो जाए तो श्रुति विचारेण युक्ति भीर दृढ़ निश्चयेन साक्षात कृत्य तिष्ठति। अच्छा, जब गुरुदेव उपदेश देते हैं कि भाई तत्त्वमसि, तत्त्वमेव त्वमेव तत्, ऐसा भी सुना गया, तत्त्वमेव त्वमेव तत्, वह तू ही है, तू ही वह है, दोनों तरफ से चलेगा। जैसे घटाकाश ही महाकाश है, महाकाश ही घटाकाश है, जीवात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही क्या है? जीवात्मा है। जब परमात्मा इस शरीर को ग्रहण कर लेता है तो इसी का नाम जीवात्मा पड़ जाता है, और जब शरीर से छूट गया तो फिर क्या रह जाएगा? परमात्मा ही तो रहेगा। घड़े में आने से नाम पड़ा घटाकाश, बाकी तो है महाकाश ही। अब ऐसे व्यापक को अव्यापक बनने में, बड़े को कई बार छोटे बनने में भी आनंद आता है। कोई बनाता है तो वो तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन जब आप अपने आप बड़े होकर के भी सामान्य बन के रहते हो, इसमें आनंद आता है कि नहीं आता है? ये आनंद लेने के लिए परमात्मा ने सोचा कि इतने बड़े बन के रहेंगे, हाँ बड़ा हुआ तो क्या हुआ भाई, इतना बड़ा भी क्यों बनना? हाँ बड़ा बनो तो कम से कम दही बड़ा बनो, खाने में मजा है। नहीं तो लोग बोल देते प्रधानमंत्री होगा तो अपने घर का होगा, बात भी सही है। तो परमात्मा ने भी सोचा कि यदि हम ब्रह्मलोक में ही रह जाएंगे, बंबई नहीं जाएंगे, तो क्या होगा? आगे देख लो कितना बड़ा 14 भुवन का निर्माण हुआ। आदि काल में सृष्टि जब प्रारंभ हुई होगी, कहां पर बैठ करके किया होगा मालूम नहीं, वो जगह मिल जाए तो सब लोग वहां पहुंचेंगे, कहां बैठ के? आज तक वो जगह दिखी नहीं, दिखने वाली भी नहीं। ठीक है, आदि स्वयंभू मनु हुए, शत्रुपा हुए, कहां पर विभाजित होकर के मृत्यु लोक में आए होंगे, लेकिन है तो आश्चर्य की बात, धीरे धीरे कितना विस्तार हो गया, विस्तार होता जा रहा है। लेकिन रामायण में जैसा आता है, लक्ष्मण जी ने जब राम जी से कहा तो वहां बोलते हैं कि सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुच्छ्रया, उत्थान का अंतिम परिणाम है पतन। जिस लौकिक विकास को हम लोग विकास बोल रहे हैं, इसका अंतिम परिणाम क्या है? ह्रास। जो विकास है वो होगा ह्रास। आज मोनो रेल, मेट्रो रेल, ये वो कितने बनते जा रहे, बनते जा रहे हैं। और जब दूसरे तरफ से पृथ्वी का जल में, जल का तेज में, तेज का वायु में विलयीकरण होना शुरू होगा, महाप्रलय काल में सब के सब गए, और फिर ऐसी सृष्टि प्रारंभ होती है, फिर चलने लगती है। तो इस समय के वातावरण को जो हम लोग देख रहे हैं, हमारा कोई संकल्प तो था नहीं, अपने कर्म के अनुसार अभी देखने को मिल रहा है। और जब कोई चला जाता है तो लोगों को लगता है हाँ वो तो चला गया, मैं बच गया। अरे बच गए तो क्या कर लोगे बच करके? वही नहाना, वही धोना, वही खाना, वही पीना, वही सोना, कौन सा तीर मार लिया बच गए तो? हाँ यदि बचे हो भगवान की कृपा से, स्वास्थ्य ठीक है तो स्वाध्याय सत्संग जरूर करो, अपने को जानने की कोशिश करो। बाकी 100 साल भी जिया और अपने को नहीं जाना तो 100 साल बेकार में ही समय गया। और यदि राजा खट्टुआंग की तरह थोड़ा भी समय मिला और उसमें यदि परमात्मा को प्राप्त कर लिया, समझ लीजिए हमने अपने समय का पूरा सदुपयोग किया। ये सब समझने की बात है। तो उस व्यापक परमात्मा को परिच्छिन्न शरीर में आकर के भी क्या मिला? बोले आनंद लेने के लिए आया। लेकिन आनंद लेने के लिए तब आवे जब उसके माया का पर्दा न पड़े। अब उस माया के पर्दा डाल करके जो नाटक करने वाला था मंच पर, उसने कहा कि मैं डायरेक्टर के अनुसार नहीं चलूंगा, मैं अपने आप नाटक करूंगा। तो जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, बोलते तो है हम लोग, लेकिन हमारा बस चले तो हम तो राम जी को भी अपने हिसाब से चलाए। राम जी के हिसाब से हम थोड़ी चलना चाहते हैं। तो इसलिए उल्टा हो गया, यहीं से कर्म बंधन प्रारंभ हो गए। ईश्वर के निर्देश में जो किया जाए, डायरेक्टर के अनुसार जो नाटक करेगा वह अच्छा पात्र माना जाएगा। डायरेक्टर पीछे से, पर्दे के पीछे से बोल रहा है ऐसा बोल, और आप कहोगे मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। तो जैसे वहां पर वो अपनी बुद्धि लड़ाता है, दिमाग लड़ाता है, ऐसे यहां पर भी हमारे अज्ञान में, बुद्धि में जो अज्ञान का, माया का पर्दा पड़ जाने से डायरेक्टर रूपी परमात्मा के निर्देशन में नाटक करके अपने मर्जी से जब नाटक करने लगे, यहीं से कर्म आदि बंधन के रूप में प्रारंभ हो गए। नहीं तो चदरिया ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया वाली बात है, जैसी चदर ओढ़ी थी वैसे ही रख दिया। तो अहम ब्रह्मास्मि से जो तत्त्वमसी महावाक्य का उपदेश दिया, गुरुदेव ने स्मरण कराया कि तत्त्वमेव त्वमेव तत्, तुम वही हो और वही तुम हो। एक हो गया स्मरण, अपने आप में याद आया कि मैं जीवात्मा नहीं हूं बल्कि परमात्मा स्वरूप हूं। अब अहम ब्रह्मास्मि में एक ऐसी भाषा की गंध निकलती है कि जो शरीर से परिच्छिन्न था परमात्मा लग रहा था, जो वो व्यापक जो परमात्मा है उसके साथ एक हो करके हम अनुभव करने लगे। अहम ब्रह्मास्मि में यही होता है, परिच्छिन्न जो आत्मा है अपरिच्छिन्न अर्थात व्यापक परमात्मा के साथ एक करके अनुभव करना ही अहम ब्रह्मास्मि, इस महावाक्य का यह उद्गार है। और जो व्यापक तो है लेकिन हमारे लिए परोक्ष है, साक्षात्कार नहीं हुआ, लेकिन शरीर में वह अपरोक्ष रूप से उपलब्ध है। शरीर में आत्मदेव हमें अपरोक्ष रूप से उपलब्ध है, आंखों से, शरीर के प्रत्येक क्रियाकलाप से जिसका स्पंदन हमें भात हो रहा है, ज्ञात हो रहा है। बाहर के चीजों में जानने के लिए कहा जाए तो कठिनाई हो भी सकती है, जो हमारे ही पास है, हमारे शरीर में ही है, उसको जानने के लिए बाहर जाने की क्या आवश्यकता है। तो जो व्यापक शरीर में आके परिच्छिन्न हुआ, उस परिच्छिन्न को अब व्यापक के साथ एक करो, और जो व्यापक परोक्ष था उसको शरीर में जो अपरोक्ष दिख रहा है इसके साथ एक करो। ये होगा अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य का अनुभव। इसलिए इसका नाम है अनुभवात्मक महावाक्य। तत्त्वमसी तो स्मरणात्मक महावाक्य, स्मरण कराया, याद दिलाया, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि जो है अनुभवात्मक महावाक्य है कि परोक्ष को अब अपरोक्ष के रूप में देखने लगे और अव्यापक को व्यापक के साथ एक करके अनुभव करने लगे। व्यापक जो बाहर था शरीर में आने से अव्यापक सा लग रहा था, अब मालूम पड़ गया कि केवल शरीर की उपाधि मात्र है, बल्कि शरीर के अंदर जो है बाहर वाले व्यापक से भिन्न नहीं है, बल्कि वही व्यापक अंदर आया हुआ है। उसी प्रकार से जो व्यापक परोक्ष लग रहा था, कहीं दिख नहीं रहा था, वो अपने शरीर में ही दिन रात स्पंदित हो रहा है। तो मनीषा पंचक में जैसा लिखा है उस प्रकार से आचार्य बोलते हैं दिन रात, और ये प्रातस्मरण स्तोत्र भी पहले श्लोक में ही हो, प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरत। तो संस्फुरत का मतलब क्या है? अच्छी तरह से स्फुरित हो रहा है। स्फुरित का मतलब स्पंदित, धक 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 जो चल रहा है, हमेशा जिसका अनुभव हो रहा है, जिसके बिना कुछ हो नहीं सकता है, फिर भी बोलते हो आत्मा कहां है। तो जो साक्षात अपरोक्ष है, परोक्ष सा लग रहा था, क्योंकि व्यापक अव्यापक हो गया, इसलिए लगने लगा, हुआ तो कभी भी नहीं। ये जब युक्ति भी दृढ़ निश्चय न साक्षात कृत्य तिष्ठति स एष परिपूर्ण ब्रह्म स्वरूप, यह वही है जो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। जिस सच्चिदानंद परमात्मा की झलक सुसुप्ति अवस्था के लिए यहां पर कह दिया था पारमार्थिक अवस्था, जबकि पारमार्थिक अवस्था तो तुरी अवस्था है। कहीं लोगों को ये भ्रम न हो जाए कि सुसुप्ति अवस्था को यदि पारमार्थिक अवस्था कह दिया तो प्राज्ञ, जो व्यष्टि शरीर का अभिमानी प्राज्ञ है, उसी को लोग मोक्ष न समझने लग जाए, तो हर लोग कहेंगे गहरी नींद में चले जाना ही मोक्ष है, क्योंकि बताया गया है कि सुषुप्ति अवस्था पारमार्थिक अवस्था है। परमार्थ कहां? वहां उपचार किया गया है, अर्थात सबसे अधिक परमात्मा की समीपता का अनुभव सुषुप्ति में होता है, और जिसका स्मरण हम जागृत में करते हैं कि सुखम अहम अस्वाप्सम न अहम किंचित अवेदिशम, मैं सुखपूर्वक सोया क्योंकि कुछ भी नहीं जाना। इसका मतलब है, जो कुछ भी नहीं जाना का मतलब है वहां की प्रपंच मात्र का कुछ भी हमें अनुभव नहीं हुआ। मैं तो था ही वहां भी, मैं था वही तो जागने के बाद बोल रहा है, जिसको हम प्रत्यभिज्ञा बोलते हैं, जिसका नाम क्या है? प्रत्यभिज्ञा, प्रति अभिज्ञा प्रत्यभिज्ञा, अभितः जानाति इति अभिज्ञ, स्त्रीलिंग में प्रयोग हो गया तो बन गया अभिज्ञा, और प्रति को जोड़ देंगे तो प्रत्यभिज्ञा, प्रति और अ। यहां थोड़े दिन व्याकरण के भी क्लास चलाए थे, आजकल बंद है क्या? तो उस व्याकरण में संधि प्रकरण में सबसे पहला सूत्र ही आता है, वो यण संधि है, ईको यणची। तो उसमें प्रति और अ, अभिज्ञा वाला अ और प्रति वाला इकार, ई और अ को जोड़ेंगे तो य बनता है, तो प्रत्यभिज्ञा अभिज्ञा। तो जागृत अवस्था में सुसुप्ति का स्मरण है, और जागृत में उसी को स्मरण करके अभी भी आपको आनंद आ रहा है बताने में, जिस आनंद का अनुभव उस समय हुआ था, तो उस अनुभव का जो यहां स्मरण हो रहा है और इस समय स्मरण करके जो अनुभव हो रहा है, तो जहां पर स्मृति और अनुभूति दोनों एक ही समय में रहे, इसी का नाम है प्रत्यभिज्ञा। जागृत अवस्था में सुषुप्ति अवस्था नहीं है, और सुषुप्ति अवस्था में जागृत अवस्था नहीं है, लेकिन जगने के बाद जो दोनों का अनुभव है, अर्थात स्मरण भी हो रहा है, उस स्मरण को करके आनंद का जो अनुभव हो रहा है, तो जो आनंद का अनुभव वहां हुआ था उसी का स्मरण करके यहां भी आनंद का अनुभव हो रहा है, इसी को बोलते हैं प्रत्यभिज्ञा। यह प्रत्यभिज्ञायते दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में आया है। तो सुषुप्ति अवस्था में परमात्मा के समीप होते हैं, और उसमें समीपता का कारण क्या है? तो दो तीन दिन पहले आप लोगों से पूछा था, शायद स्मरण होगा, कि जागृत अवस्था में हम लोग परमात्मा से दूर होते हैं कि समीप होते हैं? थोड़ा जोर से बोलो, यहां कुछ कोई खतरा नहीं है बोलने में। दूर होने का कारण क्या है? इस समय हमारी मनोवृत्ति अनात्म वस्तुओं में फैली हुई है, स्वप्न में थोड़ा कम हो जाता है, यहां जागृत अवस्था में भी मन का ही व्यापार है, लेकिन इसमें बाकी इंद्रिय आदि का भी बड़ा सहयोग है। लेकिन स्वप्न में जो स्वाप्निक सृष्टि है, वहां केवल मन के सिवाय कुछ भी नहीं है, और ऐसे मन में सारी चीजें उत्पन्न हो जाती है। तो बाहर जागृत की अपेक्षा स्वप्न में थोड़ा परमात्मा के समीप ज्यादा हो जाते हैं, और सुषुप्ति में तो कुछ भी नहीं रह जाता, इसलिए वहां पर केवल जो आनंद भुक, आनंद का जो भुक्ता बनता है, आनंदमय कोश जिसको बोलते हैं, इसलिए इसको पारमार्थिक अवस्था कहा गया। वास्तव में देखा जाए पारमार्थिक अवस्था है तुरीय अवस्था, प्राज्ञ से भी छूट जाना। तो प्राज्ञ को ही लोग पारमार्थिक न समझ ले, इसके लिए आचार्य ने थोड़ा सावधान किया कि सुषुप्ति अभिमानी को जो पारमार्थिक कहा गया, जिसमें भ्रम होने की संभावना है, लेकिन विचार करेंगे तो पारमार्थिक कूटस्थ है, जिस कूटस्थ के सत्ता में व्यापार रहित समस्त इंद्रियों का व्यापार का जो अभाव है सुषुप्ति अवस्था में। स्वप्न अवस्था में मन का जो कार्य हो तो रहता है, लेकिन सुषुप्ति में मन का कार्य भी समाप्त हो जाता है, संकल्प विकल्प नहीं रहता। और ये जो प्राण प्राणन क्रिया कर रहा है, प्राण में भी जो प्राणन क्रिया हो रही है वह भी चेतना अधिष्ठित होकर ही कर रहा है प्राण। इसलिए प्राण को भी कई जगह परमात्मा कहे, प्राणास तथा अनुगमात ब्रह्म सूत्रों में आया, अतएव प्राण, ये सब सूत्र आते। तो पारमार्थिक कूटस्थ को ही यहां पर, यद्यपि तुरीय को पारमार्थिक कह सकते थे, लेकिन व्यक्त प्रपंच से रहित होने के कारण, व्यक्त प्रपंच जागृत अवस्था में और व्यक्त प्रपंच का स्मरण स्वप्न अवस्था में, लेकिन व्यक्त प्रपंच का अभाव सुषुप्ति अवस्था में होने के कारण सुषुप्ति अवस्था को पारमार्थिक अवस्था कह दिया। इसका मतलब क्या हुआ, मोटा मोटा अर्थ याद रखिए कि व्यक्त प्रपंच का अभाव होना ही पारमार्थिक अवस्था है, यह अर्थ निकला। व्यक्त प्रपंच का अभाव होना ही पारमार्थिक अवस्था है। इसलिए श्रुति, युक्ति और व्यवहार तीन दृष्टि से जगत का विचार किया जाए, ये जो व्यक्त प्रपंच जो दिखाई दे रहा है, व्यावहारिक दृष्टि से यह जगत वास्तविक है। श्रुति के अनुसार यह जगत तुच्छ है और युक्ति के अनुसार यह जगत अनिर्वचनीय है। आज तो एक घंटे के प्रवचन में क्या याद रहेगा, इतना तो याद रख लेना कि दिखने वाले प्रपंचों का अभाव ही परमार्थ रूप है। एक तो ये अर्थ याद रखिए, नई नई भाषा है, बात वही है सब। तो व्यक्त प्रपंच का अभाव है परमार्थ, और श्रुति, युक्ति और व्यावहारिक दृष्टि से जिस व्यक्त प्रपंच का विचार किया जाता है, इसका तीन नाम है। व्यावहारिक दृष्टि से ये दिखने वाला प्रपंच अर्थात व्यक्त प्रपंच व्यावहारिक दृष्टि से वास्तविक है, श्रुति के अनुसार तुच्छ है, और युक्ति के अनुसार अनिर्वचनीय है, जिसका वाणी के द्वारा निर्वचन नहीं किया जा सकता, प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। इसलिए एक जगह किसी ने कहा कि बेटे ने पिता को पैदा किया, और सुनने में बड़ा अटपटा सा लगता है, अब देखा जाए तो बात सही है। पिता को लगता है कि मैंने पुत्र को उत्पन्न किया, लेकिन पुत्र ने किसको उत्पन्न किया, पिता को उत्पन्न किया। यदि पुत्र नहीं होगा तो पिता कौन कहेगा। तो ये जो अन्योन्याश्रय है जगत में, कौन पहले कौन बाद में, इसका निर्वचन किया ही नहीं जा सकता। निर्वचन हो जाए तो अनिर्वचनीय, फिर तो निर्वचनीय हो जाएगा, प्रतिपादन के योग्य है। निर्वक्तुम योग्यम निर्वचनीयम, निर्वक्तुम अयोग्यम अनिर्वचनीयम, इतना ही है। वाणी के द्वारा जिसका निर्वचन हो, प्रतिपादन हो, वो तो निर्वचनीय हो जाएगा, निर्वचन करने के योग्य हो गया। और ये जो जगत है ये क्या है? वाणी के द्वारा जिसका कथन नहीं किया जा सकता। संसार का क्या स्वरूप है आज तक कोई निश्चय नहीं कर पाया। भगवान स्वयं कह रहे न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तु न चादिर न च संप्रतिष्ठा। इसलिए अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। ये याद हो जाए, लोग बोलते हैं भाई मेरा जन्मदिन तुम्हें याद नहीं है। लोग बोलते हैं अपना जन्मदिन तो याद नहीं रहता, तुम्हारा कहां से याद रखूं। लोग इसी चीज में लगे हैं, व्यवहार को इतना महत्व देते हैं क्योंकि उनके दृष्टि से यह जगत वास्तविक है। श्रुति के अनुसार सबसे बात समझ में अच्छी बात है कि वह तुच्छ है, कुछ है ही नहीं, रस्सी में सांप की तरह है और क्या है। तो रस्सी में सांप दिखना ही श्रुति के अनुसार तुच्छ है, युक्ति के अनुसार अनिर्वचनीय है। सांप का कैसे वहां निर्वचन करोगे, क्या प्रतिपादन करोगे? यदि थोड़ी देर के लिए सांप सिद्ध भी कर लो और बाद में सांप हट जाता है, उससे पहले यदि विचार कीजिए, रस्सी में सांप पैदा हुआ तो सांप के रस्सी मां लगेगी कि बाप लगेगा, क्या लगेगा? हाँ, बिना मां बाप के ही कैसे सांप पैदा हो गया? वहां की उपज मात्र है, देखा जाए तो वहां कुछ भी नहीं है, तो निर्वचन ही नहीं हो सकता। लेकिन जिसको सांप दिखा वो तो डरा, भागा, चिल्लाया, उसके लिए तो वास्तविक ही था। तो जगह जगह जो दृष्टांत देते हैं इनमें सारी चीजें अपने आप लागू हो जाती हैं। तम एव पुण्य पाप कर्माणि न स्पृशन्ति इति सर्वा अपि उपनिषद एक तात्पर्येण घुष्यन्ति। ये अंतिम वाक्य था, इसने पूरा कर दिया कि तम एव पुण्य पाप कर्माणि न स्पृशन्ति। जो अहम ब्रह्मास्मि के भाव में दृढ़ हो जाता है, निश्चय कर लेता है, उसको ना तो फिर पुण्य छूते हैं और ना पाप ही स्पर्श करते हैं। सर्वा अपि उपनिषद, बाकी जितने भी उपनिषद हैं सबका एक ही तात्पर्य है कि जब स्वरूप में स्थित हो जाए फिर वह पुण्य और पाप से ऊपर उठ जाता है और वही जीवन मुक्त होकर के आनंद पूर्वक समय व्यतीत करता है। ऐसे जीवन मुक्ति के प्राप्ति होने में अभी देरी है। कारण यह है कि क्यों नहीं हो पा रहा है वो अब बताएंगे अगले प्रकरण में, इसका विचार फिर कल करेंगे। हरिओम।